You are listening to SRM Podcast, podcast for everyone.
दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल. वेलकम टू अवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल. मेरे साथ मौजूद हैं आज अनुभव ओझा. तो आज हम लेकर आए हैं अपना एपिसोड 5 और आज की न्यूज क्या है अनुभव?
आरुषि, आज की न्यूज जो है वो 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट की है, नागालैंड, जिसकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी नागास की, NSCNIM, उसने 2015 में भारत सरकार के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वहाँ पर जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्म्ड रिवॉल्यूशन चल रहा था, वो हथियार डालकर पीसफुल रिवॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट करें. तो वो जो एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, उन्होंने वो एग्रीमेंट 14 अगस्त 2020 को पब्लिक डोमेन में कर दिया, यानी कि वो जनता के सामने वो एग्रीमेंट रख दिया कि वो एग्रीमेंट के क्या पॉइंट्स है. इसी बारे में बात करेंगे हम आज.
तो अभी आपका पिछले हफ्ते के बवाल कैसे कटे? सब बढ़िया, एकदम चिल.
हाँ ऋषि, एकदम चिल हफ्ता बीता और मैं बहुत एक्साइटेड था इसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि नागालैंड, नागास, वहाँ पर क्या बात चल रही है, उस पर हमारा जो मेनलैंड इंडिया है उसको, उसके बारे में कुछ ज़्यादा खबरें आती नहीं है. तो मैं बहुत एक्साइटेड था इसके बारे में बात करने.
जहाँ पे हम घूमने के हमेशा इतने प्लान्स बनाते रहते हैं कि हम वहाँ घूमने जाएंगे और हमारे वेकेशंस बनाने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में तो जानना बहुत ही ज़रूरी है.
बिल्कुल.
तो ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं. तो अनुभव ने जैसे कि बताया कि हमारा टॉपिक है कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCIM,
यस,
जो नागालैंड की एक पार्टी है, उनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था
2015 में
एक अकॉर्ड साइन हुआ था जो कि NSCIM पार्टी ने पब्लिक में रिवील कर दिया है.
हाँ,
पब्लिक में दिखा दिया है कि उसमें है क्या और उसके अग्रीमेंट के पॉइंट्स क्या हैं. करेक्ट,
बिल्कुल.
ओके, तो अनुभव सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं कि नागास कौन है.
आरुषि, नागा जो है वो ट्राइबल लोग हैं जो इंडो मंगोलाइड, उनकी रेस है. वो इस वक्त जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन जो है और कुछ नॉर्थ बर्मा का रीजन, ये ट्राइब वहाँ पर रहती है. इस ट्राइब में लगभग 25 लाख लोग हैं, जिसमें से 18 लाख लोग नागालैंड में रहते हैं और लगभग 6 लाख लोग मणिपुर में रहते हैं.
ओके.
और लगभग 1 लाख लोग उसमें से अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और काफ़ी हद तक लोग नॉर्दर्न बर्मा और आसाम में भी रहते हैं.
ओके. तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा डेमोग्राफी नागास का है और ये पूरा जो भी एरिया है, जो छोटे छोटे एरियाज जहाँ जहाँ के भी, वो सब नागास उसको कवर करते हैं.
हाँ.
तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नागालैंड में ही नागास रह रहे हैं, क्योंकि मेजरली नागालैंड में रहते हैं तो उनको उनके नाम से जाना जाता है.
हाँ.
राइट. तो क्या अनुभव, हम थोड़ी नागालैंड की हिस्ट्री के भी बारे में बात कर सकते हैं कि नागालैंड, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि मणिपुर जो कि शायद बाद में एक स्टेट फॉर्म हुआ था.
हाँ.
लेकिन नागालैंड तो जब तक इंडिया भी और सब स्टेट्स को कंबाइन करके फॉर्म नहीं किया गया था, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बना था, उसके पहले से नागालैंड खुद को, नागा ट्राइब बहुत पहले से ही खुद को मतलब जानती है और वो लोगों का बहुत ज़्यादा नोन है कि नागा ट्राइब अपने आप को सबसे पुराना कहती है. हम जानते भी हैं इस बात को. तो मैं अनुभव एक बार लिसनर्स के लिए नागालैंड की हिस्ट्री आपसे जानना चाहूंगी.
आरुषि, नागालैंड जो स्टेट है उसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है.
ओके.
नागालैंड स्टेट जो है वो इंडिया का ईस्टर्न फ्रंटियर पर है, जो कि म्यांमार से बॉर्डर करता है.
जी, म्यांमार. जी.
नागालैंड में जो लोग रहते हैं वो मंगोलाइड रेस के होते हैं.
जी.
और मैं ये बताना चाहूंगा कि नागालैंड ब्रीफली बर्मा, यानी कि जो आज का म्यांमार है,
जी,
उन्होंने उस पर रूल किया था. लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने जो हमारे सेवन सिस्टर हिल स्टेट है
उसका
एनेक्सेशन किया, तो उन्होंने नागालैंड को फॉर्मली इंडिया में इंडक्ट कर लिया.
जी.
थ्रू एनेक्सेशन.
जी.
और 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा मिला और उनको स्टेट हेड का दर्जा तो मिल गया, लेकिन नागालैंड हमेशा से खुद का अपना एक देश चाहता था, जो नागा के लोग थे, नागा जो ट्राइब, एक अलग कंट्री चाहते थे। तो उसके लिए वो लोग काफी समय से एजिटेशन कर रहे थे जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद, और उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर भी अपनाया। लेकिन 1975 में एक शिलोंग में एक अकॉर्ड साइन हुआ था जिसके तहत उन्होंने जो है वो आर्म रिवॉल्यूशन जो है वो उसको छोड़ा और वो पीसफुली अपनी जो उनकी आइडेंटिटी थी उसके बारे में वो बात उन्होंने स्वीकार किया, हम कि उसके बारे में बात करेंगे। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अपना वो सॉवरेन स्टेट चाहते थे 1975 में, उन्होंने वो डिमांड भी छोड़ दी।
तो आपने नाम लिया एक पार्टी NSCI है,
हाँ,
जो कि हमने न्यूज में भी पढ़ा। तो अनुभव, NSCIM क्या है और NSCIM का क्या रोल है इस पीस अकॉर्ड में या फिर नागालैंड के लिए अलग कंट्री डिमांड करने में?
आरुषि, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ था
जी,
तो जो शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में वो अकॉर्ड साइन हुआ था
जी।
तो उस अकॉर्ड के तहत यही बात हुई थी जो मैंने तुम्हें बताया कि वो लोग जो है वो आर्म रिवॉल्यूशन छोड़ देंगे, हथियार डाल देंगे और सॉवरेन स्टेट की जो उनकी डिमांड है उसको वो छोड़ेंगे, और लेकिन वो नागा लोगों के लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहेंगे, एक ऑटोनॉमस रीजन चाहेंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ट्रू,
इंडियन बाउंड्रीज के तहत वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर रहेंगे लेकिन उनका जो रीजन रहेगा वो ऑटोनॉमस रीजन रहेगा
जी।
लेकिन जो ये आर्म रिवॉल्यूशन जो चल रहा था जब ये 1975 में जो शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ, तो कई लोग जो उस पार्टी में थे नागा नेशनल काउंसिल में, उनको ये चीज पसंद नहीं आई
जी।
तो उसमें से 140 लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और खुद की एक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की एक पार्टी बनाई। उसका जो मेन आदमी था जिसने उस पार्टी की स्थापना की, उनका नाम था थ्युंगालिंग म्यूवा। तो और उनके जो दो प्रमुख कमांडर थे वो थे इसाक चित्सीसू
जी
और SS खापलांग।
खापलांग, ओके।
तो उन्होंने 1980 में,
ओके, तो हम इसे ईसा खापलांग और आपने क्या बताया,
म्यूवा,
ओके, म्यूवा, ईसाक और खापलांग के नाम से याद,
हाँ, नाम से याद रख सकते हैं। तो 1980 में ये पार्टी बनी, लेकिन हुआ क्या कि पार्टी में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए तो पार्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक धड़ा था NSCIM यानी कि म्यूवा और ईसाक का
जी,
और एक धड़ा खापलांग के साथ चला गया
जी।
तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि ये पार्टी जो बनी उसमें से जो NSCIM वाला हिस्सा था वो काफी प्रोमिनेंट हो गया और खापलांग बैकड्रॉप में चला गया और वो आर्म रिवॉल्यूशन पे उसका फोकस ज्यादा हो गया
जी।
तो ये इस पार्टी का थोड़ा ब्रीफ है जो मैं आपको बताया।
ओके ओके, तो हमने क्योंकि न्यूज में है कि उन लोगों ने GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इस पार्टी ने NSCIM ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया है, तो अनुभव मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ठीक है ये सब जो भी नागालैंड की डिमांड्स थे या उस पार्टी के डिमांड्स थे, मैं जानना चाहती हूँ कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब से इस पीस के लिए कदम उठाने शुरू किए थे, मतलब उन्होंने कब से कदम उठाए और क्या क्या कदम और कैसे कैसे कदम उठाए?
ओके आरुषि, सबसे पहले तो मैंने ये बात तुमको बताई है कि उन्होंने 14 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके एक दिन पहले ही नागास ने ये घोषणा की कि हम एक अपना अलग देश चाहते हैं
जी,
ठीक है
जी।
लेकिन हमने इंडियन गवर्नमेंट ने उसको उतना तवज्जो दिया नहीं और उनकी जो इंसर्जेंसीज थी उसको क्रश किया और कभी भी उसको उस मैटर को इतना हाईलाइट नहीं होने दिया। जैसे कश्मीर का इशू, वो काफी हाईलाइटेड इशू है, सबको पता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रॉब्लम है वो इतने हाईलाइटेड नहीं है, वो मेन न्यूज़पेपर्स में आते नहीं है
जी।
तो उन्होंने ज्यादा बल के पूर्वक और अपना शानदान धंड से उस चीज को दबा के रखा
जी।
और साथ साथ वो बैकड्रॉप में चाह रहे थे कि इसका किसी भी तरह से रिजोल्यूशन हो जाए
जी।
उसके लिए एक 1975 में एक अकॉर्ड भी साइन हुआ था जो मैंने आपको बताया था, शिलोंग अकॉर्ड
जी, जी।
उसके बाद आरुषि जी, लेकिन जो मेन इनका एक लैंडमार्क इवेंट हुआ वो हुआ आजादी के 50 साल बाद 1997 में, अगस्त 1997 में
जी।
जिसके तहत जो उनकी मेन पार्टी जो NSCIM बनी थी 1980 में
जी।
उसने जो उसकी सॉवरेन डिमांड थी वो छोड़ दी.
ओके.
और उन्होंने बोला कि हम आर्म रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, सीज फायर की घोषणा की. और उन्होंने बोला कि हम पीसफुली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करना चाहेंगे.
ओके.
ये बात एनएससीएनआईएम में कही, लेकिन जो खापलांग वाला फ्रैक्शन था वो इससे ताल्लुक नहीं रखता था. उसने बोला कि
आपने मुझे जब हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे पहले भी, तो आपने मुझे बताया था कि जो खापलांग और जो ये इनके जो भी आपने बताया था कि कमांडर्स हैं, तो बाद में शायद जो एनएससीके वाली जो पार्टी है वो अलग हो गई.
वो अलग हो गई.
आप मतलब वो आप एक बार बताएंगे हमारे लिसनर्स को.
हाँ, मैंने ये बताया था कि जब 1980 में एनएससीएन की स्थापना हुई
जी,
तो म्यूवा खापलांग और ईसाक वो म्यूवा मेन आदमी थे और उनके जो दो मेन डिसाइपल थे खापलांग और ईसाक वो थे. तो उसके 8 साल बाद 1988 में खापलांग और म्यूवा और ईसाक के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसकी वजह से एनएससीएन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई. एक हिस्से में चले गए म्यूवा और ईसाक और दूसरे हिस्से में चले गए खापलांग.
तो NSCIM अलग और NSCK
अलग हो गई. तो 1997 की जो मैं अकॉर्ड की बात करूँ, वो अकॉर्ड साइन हुआ NSCN IM के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कि पीसफुली वो इस मैटर को रिजॉल्व करेंगे सॉवरेनिटी की बात.
तो मतलब NSCN को ये सब चीज से वो बाहर ही थे, मतलब उनका इसमें IM के साथ उनका सब साइन हुआ अकॉर्ड और जो भी अग्रीमेंट है, पर NSCN K का अलग ही था. मतलब वो इन सब मैटर से बाहर हो चुके हैं.
वो उस मैटर से बाहर थे क्योंकि आरुषि मैंने आपको अभी जब पहले याद दिलाया था कि जब 1975 में जो साइन हुआ था
जी
फ्रेमवर्क शिलांग अकॉर्ड, जिसकी वजह से एनएससीएन की स्थापना हुई थी, तो उसमें यही था कि उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टी थी नागा नेशनल काउंसिल, उसने ये मान लिया था कि हमें सॉवरेनिटी नहीं चाहिए. लेकिन उसी की वजह से ही उन्होंने ये बात मानी थी कि हमें सॉवरेनिटी नहीं चाहिए, हम देश के अंदर रहेंगे
जी.
उसी की वजह से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा का फॉर्मेशन हुआ था
जी,
जिसके बाद में भले ही दो हिस्से हो गए
जी, जी.
लेकिन जब 1997 में एग्रीमेंट हुआ तो खुद एनएससीएन आईएम ने माना कि हमें सॉवरेनिटी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से खापलांग बहुत खफा हुए.
अच्छा, तो वो अलग.
हाँ, अच्छा. खापलांग अलग ही थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को एकदम बहुत ही बुरा माना कि इन्होंने नागास के साथ धोखा किया है खापलांग ने.
अच्छा.
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मौके का फायदा उठा के ये किया कि खापलांग को उनका जो एसोसिएशन था उनको अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत.
ओके. तो मैं लिसनर्स से थोड़ी बात करना चाहूंगी कि आप लोग हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो, चाहे स्पॉटिफाई पर, जियो सावन पर, गूगल पॉडकास्ट पर या एप्पल पॉडकास्ट पर, आप हमें सुनते रहिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और हाँ, याद रखिए कि हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com. वहाँ ज़रूर जाइए, साइट को विज़िट करें और वहाँ जाकर हमारे और दूसरे पॉडकास्ट भी ज़रूर सुने. तो हम वापस आते हैं. अनुभव.
हाँ आरुषि.
ठीक है, हमने सब पार्टियों को समझा, मतलब सारे मैटर को समझा, और हमने जाना कि नागालैंड के सब जो भी उनके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके कुछ जो भी सॉल्यूशंस निकाल के किया. पर मैं मेन चीज़ जानना चाहती हूँ कि नागालैंड की जो पार्टी है NSCIM, उनके डिमांड्स क्या हैं, उनके डिमांड्स क्या रहे हैं और अभी करेंटली भी उनके क्या डिमांड्स हैं, क्या उनके कुछ चेंज आया है या क्या है, वो हमेशा से उनके डिमांड्स क्या थे.
आरुषि, पहली बार तो ये जब NSCIM का गठन हुआ तो उसका गठन ही इस बुनियाद पर हुआ था कि वो सॉवरेन स्टेट चाहते थे
जी.
लेकिन 1997 में उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया उसके तहत उन्होंने सॉवरेनिटी का पॉइंट छोड़ दिया
जी.
तो बात ये आती है कि जब उन्होंने सॉवरेनिटी का पॉइंट छोड़ दिया और NSCIM ही मेन पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पूरे नागा के ऑन बिहाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करती है, तो उनकी करंट डिमांड क्या
है, वो नागास को रिप्रेजेंट करती है,
वो नागास को रिप्रेजेंट करती है. तो उनकी करंट तीन मेन डिमांड है.
ओके.
पहला डिमांड ये है कि वो खुद का नागा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी वो नागा आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, नागा वे ऑफ लाइफ को, नागा की जो पॉलिटी है उसको, उसके साथ उसका मैचिंग नहीं है. तो वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जिसके अंडर वो अपना लाइफ, उनके लोग अपनी लाइफ जीना चाहते हैं
जी,
पहली बात तो वो, यानी कि वो खुद का अपना नागा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, जिसको वो लोग नागा यजाबो बोलते हैं। और उनका दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि वो एक अलग एंटिटी है इस देश में, तो इसके लिए वो नागा का खुद का एक नेशनल फ्लैग चाहते हैं।
अच्छा, नेशनल फ्लैग, ओके
ठीक है।
और तो फर्स्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद वो अलग एक नागालैंड का नागा फ्लैग चाहते हैं।
हाँ, हाँ जी। और तीसरा चीज है कि वो ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं।
ओके, ग्रेटर नागालैंड। तो मैं अनुभव आपसे पूछना चाहती हूँ, ग्रेटर नागालैंड ने मुझे थोड़ा इंटरेस्ट किया है, ग्रेटर नागालैंड क्या है?
आरुषि, ग्रेटर नागालैंड है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नागालैंड, जो नागा लोग हैं, जो नागा ट्राइब है
जी,
वो खाली नागालैंड में नहीं रहती है, वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, म्यांमार, आसाम, इन सब एरियाज में रहती है। तो नागालैंड का मतलब ये है कि वो लोग नागास जो हैं, वो जो अभी उनका करंट एरिया है
जी,
वो लगभग 16,527 किलोमीटर का जो एरिया है,
ओके,
वो चाहते हैं कि उनका वो एरिया ना रहे, वो चाहते हैं कि जितने भी एरियाज में नागा पॉपुलेशन रहती है वो सब मिलाकर वो एक एरिया, एक कंबाइंड एरिया चाहते हैं।
मतलब जैसे आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ नागा ट्राइब रह रही है, म्यांमार के कुछ हिस्से में नागा ट्राइब रह रही है, मणिपुर में नागा ट्राइब रह रही है, और आपने बताया था सिक्किम में शायद,
नहीं सिक्किम में नहीं,
आसाम में शायद नागा ट्राइब रह रही है। तो जहाँ जहाँ पर भी उनकी ट्राइब के लोग हैं, वो उन सबको मिला के कॉन्स्टिट्यूट करके अपनी एक अलग कंट्री फॉर्म करना चाहते
हैं। कंट्री फॉर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने तो अब 1997 के अकॉर्ड के तहत मान लिया,
मतलब वो एक नागालैंड का नाम देना चाहते हैं,
वो एक नागालैंड बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे सारे के सारे, मतलब जो 16,527 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो अभी नागालैंड स्टेट है, वो उसकी जगह लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं, जिसमें सारे के सारे नागा ट्राइब्स जहाँ जहाँ रहते हैं वो मिलाकर एक एंटिटी बन सके।
मतलब वो ग्रेट नागालैंड का जो वो फ्लैग चाह रहे हैं, वो नागालैंड को ही रिप्रेजेंट करे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट नागालैंड को ही रिप्रेजेंट करे।
बिल्कुल
जी, ओके। तो अनुभव, मैं वापस से हमारे इस करंट टॉपिक पर आती हूँ कि जो फ्रेमवर्क अकॉर्ड साइन हुआ 2015 में, आपने बताया था, उसमें था क्या, उसमें क्या था, क्या अग्रीमेंट्स में क्या हुआ था, और आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया होगा NSCNIM ने, मतलब इसके पहले कि आपने बताया कि शायद
क्यों रिवील किया एग्रीमेंट,
हाँ मतलब क्यों रिवील किया उन्होंने अग्रीमेंट, और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मतलब अग्रीमेंट साइन होने के बाद, सब कुछ पीसफुली रन होने के बाद, उनको पब्लिक के सामने इस चीज को दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई?
ओके आरुषि, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्रीमेंट हुआ कैसा
जी।
तो हर देश की कुछ अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं
जी।
जैसे हमारे देश की अगर मैं 2-3 एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के बारे में बोलूँ, तो सबको पता है, पहली तो पाकिस्तान है
जी,
दूसरी चाइना है
जी,
तीसरी ये है कि हमारा देश एनर्जी रिजर्व हमारे देश के पास नहीं है
जी,
तो हमको परमानेंटली एक स्टेबल पार्टनर चाहिए, पार्टनर्स चाहिए जो कि हमें एनर्जी सप्लाई देते रहे। वैसे हमारे देश की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं,
सही बात है जी,
जैसे कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है
जी,
माओइज्म है
जी,
ठीक है, बीच बीच में खालसा डिमांड उठने लगती है
जी,
वैसे ही आसाम में बोडोलैंड उल्फावाद और नागालैंड में नागा ट्राइब्स, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम्स है। हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन इशूज़ पर काम करे, उन इशूज़ को रिजॉल्व करे
जी,
और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको किसी भी तरह से देश से एक एक करके प्लग आउट करें
जी।
तो उसी के तहत जो अभी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया
जी,
गया
जी, जी।
तो वो उसी का एक इफेक्ट है, और उसी के पहले ये जो अभी हटाया गया जिसका एक साल हुआ
जी
5 अगस्त को, तो उसी
अनुभव आपको नहीं लगता कि अगस्त हमारे देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट मंथ है कि हमें आजादी मिली और सब पार्टीशन उसमें करा, और ये जितने भी इंटरनल इश्यूज हैं उसका रिजॉल्विंग सब अगस्त में ही, वो लोग चुनते हैं कि अगस्त में ही सब करना है।
मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है आजकल। तो आरुषि, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि
हाँ।
हुआ क्या कि अजीत डोभाल जो नरेंद्र मोदी ने अपॉइंटमेंट के बाद अजीत डोभाल को एनएसए बनाया था, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न पूरी पॉलिटी को बहुत ठीक से समझते हैं। वही आदमी थे जिन्होंने सिक्किम को भारत में इंडेक्ट करने के लिए बहुत अहम योगदान भी दिया था, मैं आपको ये बताऊं। तो मैं सॉरी आरुषि, मैंने फोन तो हुआ क्या कि उन्होंने जो साइन किया, जो उन्होंने एकॉर्ड साइन किया, वो इसलिए किया क्योंकि आर एन रवि एक भारत के ब्यूरोक्रेट थे जो कि इन्होंने इस मुद्दे पे काम किया, इंटरलोक्यूटर पे
जी,
वो इंटरलोक्यूटर थे, तो उन्होंने उस मुद्दे पर काम किया और नागा पीपल को समझाया कि भारत एक बहुत मजबूत देश है, ठीक
जी,
है
जी।
और नागालैंड की वैसे ही पॉपुलेशन उतनी ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं
जी,
और नागालैंड की पॉपुलेशन वैसे ही ज्यादा है नहीं, तो वो भारत के साथ एक सस्टेनेबल वॉर में नहीं आ सकते, एक वो इंसर्जेंसी होने की वजह से वो अपनी डिमांड में कभी जीत नहीं सकते। उसी की वजह से उन्होंने ये बात समझी कि हम पीसफुली ही इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं
जी।
तो पीसफुली मुद्दे को सॉल्व हम अगर करेंगे तभी हमारा फायदा है, उसी की वजह से एग्रीमेंट साइन हुआ।
आपने एक नाम लिया आर एन रवि का, शायद जहां तक मैं सही हूँ आर एन रवि नागालैंड की अभी करंट गवर्नर है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप क्या उस बारे में कुछ बताएंगे कि आर एन रवि ने क्या रोल प्ले किया है इसमें, और जो भी ये न्यूज आ रही है सामने सब में क्या टेक है उनका, और उनकी क्या मदद, मतलब मदद तो नहीं गलत वर्ड है, मतलब उन्होंने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने क्या रोल प्ले किया है एज एन इंटरलोक्यूटर इस पूरे मामले में।
आरुषि, आर एन रवि मेन इंटरलोक्यूटर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागालैंड के बीच में जिन्होंने मध्यस्थता की
जी,
उसी की वजह से उनको नागालैंड का गवर्नर भी बनाया
जी।
लेकिन हुआ क्या, जो हमारा एग्रीमेंट 2015 का साइन हुआ था
जी,
उसमें दो तीन मेन पॉइंट था। उसमें पहला पॉइंट आरुषि ये था कि जो 1997 में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि सीज फायर हो गया, कि अब कोई आर्म रिवॉल्यूशन नहीं होगा, गोलियां नहीं चलेंगी
जी जी जी।
एनएससीएन आईएम ने उसकी बहुत बार वॉयलेशन किया, उस एग्रीमेंट का बहुत बार सीज फायर वॉयलेशन किया और बहुत गोलियां चलाई
जी।
तो मेन पॉइंट ये आया उस एग्रीमेंट में 2015 के कि अब एनएससीएन आईएम आर्म रेबेलियन नहीं करेगा
जी,
पहली बात
जी।
दूसरी बात ये हुई कि इंडिया ने इस बात को माना, इस बात को एक्नॉलेज किया कि नागा जो नागाज है वो एक एंशियंट ट्राइब है और उनका जो रिप्रेजेंटेशन का हक है वो जायज़ है, कि उनको उनकी एक एंटिटी बरकरार रहनी चाहिए, वो हक जायज़ है, ठीक है
जी।
उसी एग्रीमेंट में ये पॉइंट भी एनएससीएनआईएम ने स्वीकार किया कि हम एक सॉवरेन स्टेट नहीं बन सकते हैं
जी,
और हमको भारत गणराज्य के अंदर ही रहना है
जी। अनुभव, ये एक और बात मैंने भी पढ़ा कि कुछ समय पहले की जो आर एन रवि हैं वो पहले मेघालय के भी गवर्नर रह चुके हैं।
आर एन रवि जी ने असल में, मैं बताऊं कि आर एन रवि जी भारत के इंटरलोक्यूटर्स हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट मुद्दों की काफी समझ है,
क्योंकि वो पहले उसके भी पहले तो वो रिटायर्ड आईपीएस हैं
बिल्कुल,
और उन्होंने काफी गौर से ये सब चीजें अंदर से देखी हैं।
हाँ।
और उसके बाद मैंने अभी पढ़ा कि वो शायद एक साल उन्होंने गवर्नरशिप ऑफ मेघालय भी निभाया था 19 to 20, फिर उनको वो मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो उस दौरान भी ये सब इंटरलोक्यूशन कर रहे थे और इंटरलोक्यूटर का रोल प्ले करते, क्योंकि मुझे लगता है आर एन रवि एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है इस केस में।
आर एन रवि बहुत इम्पोर्टेंट नाम है आरुषि, क्योंकि वो वहाँ पर जमे हुए हैं, उन्होंने वो सब चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं नागा,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि पहले वो मेघालय के गवर्नर है और उनको तुरंत बाद नागालैंड का गवर्नर बना दिया जाता है।
हाँ।
कि मतलब वो इसी चीज़ की मध्यस्थता कर रहे हैं और सब ये सब देख रहे हैं। तो न्यूज़ में जब आया अनुभव कि उन्होंने जो कॉपी एनएससीआईएम ने रिवील करी पब्लिक को, तो उन्होंने एक ब्लेम किया कि उनको जो कॉपी दी गई है वो ओरिजिनल दी, पर जो उन्होंने प्रेजेंट की है वो एक मैनिपुलेटेड कॉपी है।
हाँ।
तो अनुभव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो मैनिपुलेटेड कॉपी और उस ओरिजिनल कॉपी में डिफरेंस क्या है।
ओके, आरुषि, बात ये हुई कि जब 2015 का अकॉर्ड साइन हुआ तो उसकी उसका मेन पॉइंट ये था कि देखो सिंपल भाषा में समझो तो मेन बात ये समझाई गई कि तुमको तुम्हारा तुमको भारत के फ्रेमवर्क में ही रहना है
जी,
तुम्हें उसके अंदर रहना है, हम आपकी जो नागा एंटिटी की बात है हम उसको स्वीकार करते हैं
जी,
कि आपकी खुद की एंटिटी होनी चाहिए और एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन की स्थापना की जाए
जी,
कि उनको जो उनको उनका जो एरिया है नागालैंड के आसपास, नागालैंड के आसपास का छोड़िए जो नागालैंड का ही एरिया है
जी,
जहाँ पे मेनली सब नागास रहते हैं जी, जो नागालैंड में ही रहते हैं
जी,
तो वो सारे के सारे लोग अपने आप को कैसे ऑटोनॉमसली गवर्न करें विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पीसफुली कैसे इस चीज के एंड रिजल्ट तक पहुंचा जाए
जी,
तो ये बात हुई थी। तो इसके तहत जो इसके लिए आर एन रवि को गवर्नर भी बनाया गया
जी,
तो वो जितनी भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स थे, जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज थी, जैसे NSCN, IM है और वहाँ की जो नेशनल नागा पॉलिटिकल पार्टीज हैं NNGP, तो उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे। तो NSCN IM का क्या आरोप हुआ आरुषि की, उन्होंने बोला कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत पूरा रिजोल्यूशन होना था, मिस्टर रवि उस एग्रीमेंट का जो प्रारूप दिखा रहे थे उन पार्टीज को, जो NSCN IM के अलावा जो पार्टीज थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी डिफरेंट थी। तो उसमें मेजर डिफरेंस क्या था कि जो NSCN IM को लगता था जो एग्रीमेंट है वो ग्रेटर नागालैंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा उसमें आता, मतलब वो जहाँ जहाँ भी नागाज हैं नागालैंड के अलावा वो हर जगह नागा की बात करता है
जी,
मेन एग्रीमेंट। लेकिन मिस्टर रवि कहते थे कि ये जो एग्रीमेंट है वो खाली नागालैंड के लोगों जो नागालैंड में रहते हैं उनके लिए ही,
मतलब वो जो दूसरे पार्ट्स में नागा ट्राइब रह रही है वो उनको कंसीडर नहीं करते, हाँ। खाली जो नागालैंड के ही लोग हैं उनको ही कंसीडर,
हाँ, बिल्कुल
जी।
और दूसरी चीज ये थी कि जो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी कि हमारा खुद का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा
जी,
उसके बारे में आगे एग्रीमेंट एस्टेब्लिश होगा, लेकिन जो मिस्टर रवि थे वो ऐसा कहना NSCN IM का है कि वो कहते थे कि जो भी चीज़ें होंगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही होंगी, यानी कि कुल मिलाकर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा।
अच्छा,
तो उनका ये दोनों पॉइंट की वजह से ही NSCN IM को लगा कि जो 2015 का एग्रीमेंट था उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके मॉडिफाई करके नागालैंड के लोगों को दिखाया जा रहा है, इस मतलब NSCN IM के अलावा जो स्टेक होल्डर्स उनको दिखाया जा रहा है और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि नागा लोगों में डिवीजन हो और जो उनकी जो इफेक्टिव डिमांड्स हैं वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उन लोगों को आप अपनी तरफ मिला रहे हैं। वो उनका आरोप है कि रवि जो आरएन रवि जी हैं वो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिला रहे हैं और वो नागा पीपल को डिवाइड कर रहे हैं,
वो उनकी डिमांड्स को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं ताकि वो चीज मतलब,
हाँ, ताकि जो जितना इफेक्टिव बार्गेनिंग नागा कर पाएंगे
जी,
वो नहीं हो पाएगी। इसी वजह से उन्होंने जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट था
ओरिजिनल कॉपी
उसको लोगों के सामने दिखा दिया कि देखिए भाई साहब,
वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल,
हाँ, वो ओरिजिनल एग्रीमेंट था, वो दिखा दिया कि देखिए भाई साहब पूरी दुनिया को दिखाया कि ओरिजिनल एग्रीमेंट ये था, लेकिन जो रवि साहब है वो एग्रीमेंट कुछ मॉडिफाई करके उसकी कुछ मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि नागा लोगों की डिमांड को कमजोर करता है।
ओके, तो अनुभव ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस आपसे कंक्लूसिवली पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है, क्या लगता है कि कब तक ये जो मामले हैं, वैसे तो ये मामले आज से नहीं है, 50-50 साल जब से आज़ादी का हम आज़ाद हुए हैं या उसके पहले से भी ये सब मामले चलते आ रहे हैं, चाहे वो खालसा हो, चाहे बोडोलैंड का मामला हो, चाहे ये नागालैंड का मामला हो या नागा ट्राइब का मामला हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कभी ना कभी समय समय लेकर उठते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज जो सरकार है या जो पहले सरकार थी या जो आने वाली सरकार है, आपको क्या लगता है कि एक क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि ये इन चीज़ों को थोड़ा कम किया जा सके?
ओके, आरुषि, हमको पहली चीज़ ये समझनी होगी कि हमारा देश का जो डेमोग्राफी है, जो हमारे देश का स्ट्रक्चर है, वो दुनिया के जो बाकी स्टेबल देश हैं उनकी तरह नहीं है
जी,
जैसे जर्मनी जर्मन्स का है, फ्रांस जो है फ्रेंच का है
जी, बिल्कुल,
जो यूके है वो इंग्लिश का है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा देश है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, वो उत्तर प्रदेश वासियों का है या फिर वो तमिल्स का है या राजस्थानी का है, हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते।
जी सही बात है जी।
हमारे देश की जो अनेकता में हमारे देश की एकता है
जी,
और इसमें आयुषी ये बात मैं कहते समय लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि भले हमारे देश में इतनी विभिन्न भाषाएं हैं कि हमारे देश में बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती भाषाएं बोली जाती, लेकिन ओवरऑल जो हमारे देश में लोग भले ही भाषा अलग है लेकिन हमारे देश को में एक स्टेट से दूसरे स्टेट के मूवमेंट में जो हमारे देश में माइग्रेशन होता है उसमें लोगों को कभी दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो उनको भाषा की दिक्कत आ सकती है, ये बात मैं मानता हूँ
जी,
लेकिन जो वहाँ का खाना पीना है, जो गणेश चतुर्थी
मतलब है, बहुत डिफरेंस इन कल्चर वो नहीं महसूस,
ऐसा कोई कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है
जी।
और खासकर जब अगर कोई मान लीजिए गुजरात का आदमी है बंगाल जा रहा है या फिर आप मारवाड़ियों का एग्जांपल दे दीजिए कि कितने सारे मारवाड़ी राजस्थान में रहते हैं
जी,
तो भाषा का डिफरेंस मान सकते हैं, अलग में रहते हैं, भाषा का डिफरेंस मान सकते हैं, लेकिन अगर आप भाषा को छोड़ दें तो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के लोगों के मिक्सिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होती।
लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट का मामला उठाएं,
लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट का मामला उठाएं तो अगर कोई नागालैंड का आदमी या कोई मिजो आदमी
जी,
या फिर मेघालय की गारो खासी जनते हिल्स के जो ट्राइबल लोग हैं, अगर आप उनको बिहार छोड़ दें
जी,
या फिर आप उनको ईस्टर्न यूपी में,
या फिर अगर कोई ईस्टर्न या वेस्टर्न का आदमी उठकर नॉर्थ ईस्ट में जाता है तो उसको भी वही दिक्कत,
हाँ उसको भी वही काफी दिक्कत
जी,
होगी
जी, जी।
तो ओवरऑल ये मुद्दे खत्म तब तक नहीं होंगे जब तक दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे मेनलैंड इंडिया का जो डेवलपमेंट है, आप दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, बैंगलोर देखिए, उनका जो डेवलपमेंट है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का डेवलपमेंट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है
जी, काफी
वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्रीकल्चर, जो वहाँ का, वहाँ पे उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं है और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज हैं, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत पुअर है
जी।
तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग जब दिल्ली आते हैं, जब वहाँ के लोग बैंगलोर जाते हैं तो वो देखते आ रहे हैं इंडिया तो ऐसा है और हम कैसा इंडिया देखते हैं, तो उनको एक एलिनेशन फील होता है, उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वो हमारी, हम लोगों की गवर्नमेंट हम लोगों को प्रायोरिटी में लेती ही नहीं है
जी।
फिर जब उनको इस बात का एहसास होता है तो वो एलिनेट होने लगते हैं और
वो एजिटेशन निकलता है,
फिर वो एजिटेशन निकलता है। तो सबसे पहले तो जब तक उनका डेवलपमेंट इन पैरिटी विद अदर मेन इंडियन स्टेट्स नहीं होगा तब तक ये मुद्दे उठते रहेंगे
जी।
दूसरी चीज ये है कि जैसा मैंने बोला कि वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उनका खुद का कस्टम है, कल्चर है, जो कि बिल्कुल ही वर्जिन कल्चर है, जो कि टच नहीं हुआ है, उनकी कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है
जी।
बहुत सारे ऐसे नॉर्थ इंडियन है जिन्होंने गुजरातियों के साथ शादी की हुई, बहुत सारे ऐसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने बंगाली में शादी की, लेकिन शायद ही कैसा
हाँ,
होगा कि नागालैंड के लोगों ने जाके बाहर शादी की या फिर हम लोग वहां जाके
या मिजोरम या कहीं मणिपुर हाँ, कोई भी किसी भी
हाँ, किसी के साथ भी ऐसा हुआ
जी।
तो हमको उनको एक सेपरेट एंटिटी के रूप में देखना होगा और उनका जो जीवन जीने का ढंग है
जी,
उनको उस चीज को प्रिजर्व करने के राइट्स देने होंगे
जी,
ताकि वो अपना एक पीसफुल जीवन जी सके
जी।
और वो चीज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। अब यही इस अकॉर्ड के बाद यही चीज़ देखनी है कि ये चीज़ कहाँ तक हो पाती है कि वो लोग अपने ऑटोनॉमसली वो लोग अपना जीवन जी भी पाएँ और वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के अंदर भी रहें और उनके साथ डेवलपमेंट, उनका पूरा डेवलपमेंट होता रहे और धीरे धीरे वो हमारी सोसाइटी में इंडक्ट भी हो और तो अपना कस्टम भी बचाएं। ये सारी कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तो सारे भारत में जितने भी वो डिस्प्यूट्स हैं, स्पीड है, सब एकदम अच्छे से जीवन जाएंगे।
तो आपको लगता है कि भारत जो अभी भारत सरकार है, करंट बीजेपी सरकार है, उन्होंने इस ओर जो कदम उठाए हैं, आपको लगता है कि वो कुछ शायद अगर 10 में से 10 नहीं तो 10 में से कुछ नंबर उनको दिए जा सकते हैं कि उन्होंने कुछ कदम इस ओर उठाए हैं बढ़ने के लिए और ये कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी?
बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का ये बात तो एक्सेप्ट करता ही हूँ कि जो हमारे मुद्दे थे, मतलब जो इश्यूज जो कि एकदम टच नहीं हो रहे थे,
जी,
जैसे
कश्मीर
का इशू था, जैसे बांग्लादेश का बाउंड्री डिस्प्यूट था
जी,
जो उन्होंने रिजोल्व किया, तो वो उन सब चीजों को करने का उनका एक विल है
जी,
ठीक है, तो वो उस विल को काम करे, लेकिन उस चीज को कितना अमली जामा पहनाया जा सकता है, वो कितना, जो कहते हैं ना, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि आप उस एग्रीमेंट के लिए आप कितना आगे बढ़ के उसको रियल लाइफ में उतार सकते हैं, वो चीज देखने की बात है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में काफी ज्यादा, हाँ, ब्रिजेस का और रोड्स का डेवलपमेंट किया है, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी था। लेकिन जो ये सब स्टेट्स हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, उनके पास तक डेवलपमेंट जब पहुंचेगा, जब उनके लोगों को लगेगा कि हमारा जो, हमारा भारत देश है, उसका जो जीडीपी का हिस्सा कुछ हमारे लिए भी खर्च हो रहा है, तो ही खुशियाँ लिएगी।
बात आप सही कहते हैं, तो हम विश करते हैं कि इस चीज़ों पर आगे और अच्छे कदम लिए जाएं और आगे आने वाले सालों में इन चीज़ों के ये जो मुद्दे हैं, ये शायद कहीं ना कहीं कुछ हद तक शांत हो जाए। तो ठीक है अनुभव, हम आप फिर आज इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू आयुषी।